श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 14। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो इस श्लोक में भगवान का परमात्मा का वर्णन किया जा रहा है। इस श्लोक से कभी कभी लोग सोचने लग जाएंगे कि ये श्लोक शायद आत्मा के लिए है, लेकिन ये आत्मा के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए है। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। तो इसे समझ लेना चाहिए, और हम देख भी रहे हैं कि मेरे और आपके कान हाथ पांव आंख सब जगह व्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार की कोई कल्पना करे कि आत्मा सर्वव्यापी है तो ऐसा नहीं है। ये अगर कहा जाए कि आत्मा हर जगह स्थित रहती है, बहुत सारी आत्माएं और बहुत जगह रहती हैं, तो इसलिए इनका वर्णन इस प्रकार से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में ही कण कण में व्याप्त हैं, और वही हर वस्तु हर हर परिस्थिति से अभिज्ञ रहते हैं, जानते हैं। हम लोग हर जगह नहीं, मैं अगर रहता भी हूँ तो कभी विशिष्ट स्थान में ही रह सकता हूँ, और कुछ कुछ मात्रा में ही ज्ञान मेरे पास रह सकता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं है, हर जगह व्याप्त रह करके वो सब कुछ जानते भी हैं। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं, और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत शिर हाथ पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं, ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं, यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि इसका उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है, परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते होते तो होते तो फिर उन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं, यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट जो श्लोक इसमें सीखने को हमें मिल रहा है कि इस श्लोक में परमात्मा का, जो कि दूसरे गे वस्तु हैं, जानने योग्य वस्तु हैं, उनका वर्णन हो रहा है, न कि जीवात्मा का जो कि अणु है। कुछ पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे सीखने हैं, एक बात ये कि भगवान इस सृष्टि में सर्वव्यापी हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कृष्ण गोलोक में तो स्थित हैं, लेकिन इस जगत के परमाणु के भीतर भी हैं और परमाणु के बीच में भी स्थित हैं। लेकिन भगवान अगर सब जगह सर्वव्यापी हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें अपना रूप या अपना व्यक्तित्व को खो दिया है। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भगवान अगर सब जगह हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का जो स्वरूप है वो नष्ट हो गया है। ये भगवान की अचिंत शक्ति है कि सर्वव्यापी होने के बावजूद भी वो अपने व्यक्तित्व को स्वीकार वो मेंटेन करके रखते हैं। और दूसरी बात ये जो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि कोई कहे कि नहीं मैं सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन केवल अज्ञान के कारण मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये बड़ा मूर्तापूर्ण तर्क है, या ये कह सकते हैं ये वाद है मायावाद के आधार पे कि जीवात्मा हर जगह है। अगर हर कोई व्यक्ति भगवान होता तो भगवान होने की विशिष्टता ही समाप्त हो जाती। जैसे अगर कोई हर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट होने की जो महत्व है वही समाप्त हो जाता है। तो और दूसरा बात यह है कि यदि मैं सर्वशक्तिमान था तो माया मुझको वशीभूत कैसे कर पाई। तो इसलिए व्यक्ति को कभी नहीं इन बातों को ग्रहण करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ कतई नहीं है कि हम लोग हर जगह हैं और अपने को भूल गए हैं कि हम हर जगह हैं, ना। हमें तो बस ये समझना है कि भगवान सब जगह हैं। और ये बहुत सुंदर बात है, क्यों? क्योंकि भगवान सब जगह हैं इस कारण से भगवान की सेवा करने में कोई इन्फॉर्मेशन गैप नहीं है। आप कहीं पे भी हैं, अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो भगवान जानते हैं कि आपका भाव क्या है और आप क्या सेवा कर रहे हैं, और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो यानी कि भगवान हर जगह हैं, जैसे कि हम लोग सुनते हैं भगवान अपने फोटो में भी हैं और भगवान अपने विग्रह रूप में हैं, और कम से कम वैसे हर जगह हैं, लेकिन वहाँ पे हम भगवान को देखना शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे हम भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं, वहाँ के इसके द्वारा भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे सीखा कि भगवान सब जगह हैं, अर्थात वो हर जगह हर वस्तु हर परिस्थिति को जानते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको हमारी वो सेवा को स्वीकार कर सकते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं और रक्षा कर भी सकते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें इस श्लोक से हमें सीखने के लिए हैं, और ये सारे इसीलिए समझना चाहिए कि इस श्लोक के द्वारा आत्मा का नहीं अपितु परमात्मा का वर्णन हो रहा है।